मैं विवेकानंद, बीए द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान संकाय। अब आप लोगों के लिए समाजशास्त्र पेपर 3 सामाजिक आंदोलन के एक चैप्टर कृषक आंदोलन को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अगर कहीं उच्चारण में थोड़ी बहुत गलती होती है या कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा करने का कष्ट करें। भारत में कृषक आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। कृषक आंदोलन के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं जो अलग अलग कारणों पर आधारित हैं। ये सिद्धांत है नैतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नैतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत का अनुसरण स्कॉट वुल्फ तथा मिगडाल ने किया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रायः मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में प्रयुक्त होती है, किंतु पापकिन ने इसका प्रयोग मार्क्सवादी अर्थ में न करके रूढ़िवादी ढंग से किया है। इसके लिए उसने फ्राइलिंग, ओपेनहाइमर तथा यंग, ओल्सोन, बैरी तथा बैनफील्ड जैसे अमेरिकन अर्थशास्त्रियों से प्रेरणा ली है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत सीधे मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। कृषक आंदोलन की ये तीनों सामयिक सिद्धांत सामान्य परंपरागत चिंतकों की स्थापित परंपरा से प्रेरणा लेते हैं। टिल्ली ने इसे क्रमशः दुर्खिमियन, मिलिनियन तथा मार्क्सवादी कहा है। टिल्ली के एक चौथे परंपरा बेबेरियन की चर्चा की है, जिसका आधुनिक चिंतक कृषक आंदोलन के संदर्भ में उपयोग बहुत कम या नहीं करते हैं। नैतिक अर्थव्यवस्था मूलतः दुर्खिम से प्रेरणा लेती है। दुर्खिम का अनुसरण करने वाले औद्योगिकवाद पूंजीवाद के विनाशक प्रभावों के भय को स्वीकार करते हैं और सामाजिक आंदोलन को तीव्र परिवर्तन के दौरान समाज की समेकता को नष्ट करने की प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं। राजनैतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को मानने वाले मिलियन हैं। उन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल के तार्किक व्यक्ति में बड़ी अभिरुचि थी। मिल का तार्किक व्यक्ति बाह्य निर्णयों से निर्दिष्ट होता है तथा उसमें वर्ग पर आधारित राजनीतिक क्रिया में अभिरुचि और भय का अभाव होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रमाण चिन्ह है। यह मार्क्स के सिद्धांत का स्थानापन्न नहीं करता है। इसका स्वरूप श्रमिक आंदोलन से एकदम अलग होता है। कार्ल मार्क्स ने जहां किसानों को एक निष्क्रिय वर्ग मानकर सर्वहाराओं को अधिक महत्वपूर्ण माना है, वहीं दूसरी ओर लेनिन, माओत्सेतुंग जैसे लोगों ने कृषकों को क्रांति के केंद्रक की संज्ञा दी है। भारतीय संदर्भ में भी विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय एवं भूदान आंदोलनों का समग्र केंद्र भी कृषक समुदाय ही रहा है। भारत का नक्सलवादी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, आसाम के बगान तेभांग, निजाई बोल, हिंदू सतनामी, भूमि हथियारों, आंध्र जन संघम से संबंधित समस्त आंदोलन कृषक समाज के उत्थान के उद्देश्य से किए गए थे। भारत में किसान आंदोलन अर्धसामंती व्यवस्था के विरोध में हुए हैं। कृषि सुधार लाना इसका उद्देश्य रहा है। किसान आंदोलन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट। पी सुराना के अनुसार कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलनों की ओर लक्ष्य करते हैं जिनका मूल आधार कृषि की आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जो मूलतः अपने सत्तापरक स्वामियों के अवरोध से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। राम विचार पांडे के अनुसार कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है, बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो अथवा अन्य समूहों द्वारा। डॉक्टर तरुण मजूमदार के अनुसार कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसिक प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रोफेसर आर सिंह के अनुसार हिंसा अथवा हिंसा का भय दिखाकर, अन्यथा कृषि कार्यों से निरपेक्ष भाव दिखाकर, जब खेतिहर मजदूर भू स्वामियों तथा अथवा संबंधित सरकार को झुकाने का प्रयास करता है, तब कृषक आंदोलन जन्म लेते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो कृषक आंदोलन वस्तुतः खेतिहर मजदूरों अथवा किसानों के संबंधित आंदोलन है, जो उनके शोषण, पतन तथा आर्थिक परतंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होते हैं। किसान अथवा उससे संबंधित अन्य समूहों का भी सहभाग इन आंदोलनों का एक आवश्यक अंग हो सकता है। खेती करने वाला किसान, अर्थ पर मजदूरी करने वाला मजदूर, केवल हल जोतने वाला हलवाहा, धान रोपाई वाली ग्रामीण औरतें तथा अनाज से भूसा अलग करने वाला सामान्य किसान श्रमिक भी इन आंदोलनों का समान सहभागी होता है। किसान आंदोलन के कारण। वेलिंगटन मूर ने कृषक आंदोलन के मुख्य चार कारण बतलाए हैं। पहला, उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार के प्रभावों से कृषकों की बिगड़ती हुई स्थिति। दूसरा, भौतिक स्थितियों में कमी। तीसरा, विद्रोहियों में जमीनहीनों की संख्या वृद्धि। चौथा, धार्मिक अंशभूतों की उपस्थिति। एरिक बुल्क ने कृषक आंदोलन के कारणों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा है। पहला, मजदूरी की कीमत। दूसरा, जमीन खेत का किराया। तीसरा, धन दौलत से सम्मति का आकलन होना। डॉक्टर डी एन धांगरा ने अपनी पुस्तक पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया में अनेक किसान संघर्षों का अध्ययन करके भारत में किसान संघर्ष के निम्नलिखित कारण बतलाए हैं। पहला, जिन क्षेत्रों में व्यापारी कृषि नगदी फसल का उत्पादन का रूप सामने आया वहां किसान आंदोलन हुए, जैसे गन्ना वाला मोपलाह आंदोलन, गुजरात में खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, किसान सत्याग्रह, बंगाल में तेभागा आंदोलन, निजाम हैदराबाद तेलंगाना किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों में बाजार के लिए नगदी फसल निर्यात की जाने वाली फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया गया, किंतु अंतर विरोध यह है कि जमींदारी महलवाड़ी व्यवस्थाएं कायम रही, जिसके कारण कृषि श्रमिक स्वतंत्र नहीं थे। अतः छोटे किसानों, मध्यम किसानों, बटाईदारों, खेती मजदूरों, छोटी जाति के बंधुआ मजदूरों, बेकार श्रमिकों ने संघर्ष का रास्ता बनाया। दूसरा, हिंदू जाति संगठन के सीमांत स्थिति समूहों ने सामाजिक आर्थिक दूरी के कारण संघर्ष का रास्ता अपनाया, जैसे मालवा, अवध के पारसी, चमार, कुर्मी, अहिर, बंगाल के संथाल, राजबेरी जनजातियों और तेलंगाना के लंबड़ी, लोपा, चेचू, राजगोड़ जनजातियां। तीसरा, ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक चेतना का संबंध कृषि संघर्ष से है। धनागरे के अनुसार जिन क्षेत्रों में कम राजनीतिकरण हुए वहां ज्यादा हिंसात्मक आंदोलन हुए, जिन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिकरण हुआ वहां कम संघर्ष हुए, तथा जहां आंदोलन का स्वरूप उदारवादी, सुधारवादी, गांधीवादी रहा, जैसे बिहार, बंगाल के आंदोलन। किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि अधिक राजनीतिकरण हिंसक क्रांति हेतु किसान अधिक उत्तरदायी रहे, जैसे अवध वर्तमान में किसानों का केंद्रीय आंदोलन। चौथा, केंद्रीय सत्ता के दुर्बल पड़ने पर किसानों के वर्ग संघर्ष अक्सर होते हैं, जैसे राजनीतिक संकट के घेरे में तेलंगाना तथा तेभागा मोपलाह विद्रोह हुए। पांचवा, किसान आंदोलन का एक मुख्य कारण राष्ट्रीय आंदोलन रहा है। 1920-22 में असहयोग, 1930-32 में सत्याग्रह, ऐसे ही आंदोलन थे जब ये भारत के कई क्षेत्रों में अपनी मांग को लेकर उठ खड़े हो गए। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कारण अग्रलिखित। पहला, ब्रिटिश काल में कृषक असंतोष। अंग्रेजी शासनकाल में अनेक किसान आंदोलन हुए। इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि तीन प्रकार के भूमि संबंधों के आधार पर बनती है। ये भूमि संबंध जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी है। जो वास्तविक किसान उत्पादक हैं, सरकार उनसे अप्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मचारी या करिंदों के द्वारा लगान वसूलती थी। इस प्रक्रिया में जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण, जैसे कम मजदूरी में अधिक काम लेना या बेगारी आदि था। गैर आर्थिक शोषण मारना पीटना तथा अत्याचार करना था। इन कारणों से किसानों में असंतोष बढ़ा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संगठित होकर उन्होंने संघर्ष किया। कुछ क्षेत्रों में यह संघर्ष जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार के खिलाफ तथा अन्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी, करिंदों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन हुए। दूसरा, भूमि का असमान वितरण। एक उत्तर जनसंख्या का भार भूमि पर बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण है। भूमि सुधार प्रणाली के लागू होने के बाद भी 10% धनी जमींदारों के पास कुल भूमि का 30% भाग है। देश में मध्य किसानों के पास 50% है। इस प्रकार से निम्न किसानों के पास कुल कृषि भूमि का 20% है, जबकि इनकी संख्या काफी अधिक है। तीसरा, कृषक संगठनों में वृद्धि। 1919 के असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय संरचना में भी संगठनात्मक चेतना आई है। 1932 में आंध्र प्रदेश में रैयत संघ का गठन हुआ। 1926-27 के मध्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान संघ का गठन किया गया। कांग्रेस के असहयोग के साथ साथ किसान आंदोलन और किसान संघ का विकास होता गया। 1927 में बिहार किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में लखनऊ में संपूर्ण भारतीय किसान कांग्रेस का संगठन किया गया। 1937 में कांग्रेस से अलग होकर किसान संगठन ने अपना अलग अस्तित्व स्थापित किया। कृषक संगठन की वृद्धि किसान आंदोलन का एक परिणाम रही। चौथा, वर्ग चेतना में वृद्धि। स्वतंत्रता के समय कृषकों ने सहयोग दिया, जहाँ कुछ किसान भूमिधर बने, वहीं कुछ किसान खेतिहर मजदूर के रूप में परिवर्तित हो गए। आर्थिक नियोजन में जो खेती का विकास हुआ तो लोकतंत्र में संख्या बल का एहसास हुआ, इससे लोगों की अलग अलग पहचान बनी और वर्ग चेतना का विकास हुआ, जिसमें पिछड़े वर्गों की जातियों की शिक्षा, प्रशासनिक सभाओं और विधान पालिकाओं में संरक्षण का मामला प्रकाश में आया। वर्ग चेतना भी कृषकों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा देती है। पांचवा, विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल। विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें भी आंदोलन का प्रमुख कारण बनी। चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन नील के किसानों के लिए तेभागा आंदोलन धान की समस्याओं से संबंधित था। नक्सलवादी आंदोलन भी यहाँ के प्रमुख फसल जूट की समस्याओं से संबंधित था। अतः विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें भी आंदोलन का प्रमुख कारण रही है। छवा, कृषकों में जागरूकता। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कृषकों में कृषि संगठनों में वृद्धि, वर्ग चेतना में वृद्धि, शिक्षा के प्रसार, बढ़ते हुए असंतोष के कारण कृषकों में काफी जागरूकता आई है, जिससे कृषि आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला है। सत्वा, हरित क्रांति से उत्पन्न असंतोष। हरित क्रांति को केवल कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ भूभाग में, और गिनी चुनी फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलों को ही लिया गया। अतः इस क्रांति से कुछ विशेष और फसलों को लाभ मिला, अन्य क्षेत्रों और फसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिससे किसानों के असंतोष में वृद्धि हुई। इसके अलावा नई कृषि, जिसमें ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, पंजीकृत साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे किसानों में धीरे धीरे असंतोष फैल गया, जो आंदोलन का प्रमुख कारण बना। अठवा, यंत्रीकरण। भारत एक श्रम प्रधान देश है, यहाँ पहले से ही बेरोजगारी एक समस्या है। कृषि के यंत्रीकरण किए जाने से देश में लाखों खेतिहर श्रम मजदूर बेकार हो गए, अतः कृषि में यंत्रीकरण के कारण कृषकों के असंतोष में वृद्धि हुई। नवा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण देश में उत्पन्न पूंजी औद्योगिक क्षेत्रों में लगाई जा रही है, जिससे खेती की उपज के मूल्यों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और बेकारी में वृद्धि हो रही है, जबकि औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अतः कृषकों के असंतोष से यह आंदोलन का कारण बना। दसवां, वर्तमान समय में शोषण का भय। 1985 के आरंभ में सत्तारूढ़ दल ने 21वीं शताब्दी में ले जाने का मुख्य रास्ता सघन पूंजी वाले अत्याधुनिक उद्योगों को लगाया जाना माना है। अतः उत्पन्न पूंजी को बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में भारी अनुपात में लगाया गया, जिससे खेती की उपज के फायदों का असंतुलन और अधिक बिगड़ गया और किसानों के नेतृत्व में यह महसूस किया कि यदि देश ने यह रास्ता अपनाया तो न केवल छोटे छोटे उद्योग, खेती और अन्य व्यवसाय की दुर्दशा होगी, बल्कि बेकारी भी बढ़ेगी और देश का इन रास्तों से विकास करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। गांधीवादी और समाजवादी विचारक ही नहीं, बल्कि सच्चे लोकतंत्रवादी और मानववादी सभी इसकी स्थिति से अवगत हैं, इसलिए कृषक आंदोलन की ओर कृषकों का ध्यान आकर्षित हुआ। 11, कृषकों की शोचनीय दशाएं। कृषकों को खेती के क्षेत्र में सिंचाई की कमी, दामों की लूट, ब्याज की बढ़ती दर, बढ़ती हुई महंगाई और जनसंख्या वृद्धि आदि कारण इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई और किसानों का निचला तबका सीमांत भूमिहीन तथा बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर हो गया। अर्थशास्त्री बंधोपाध्याय के अनुसार 1970 से 80 के दशक में 1,60,00,000 किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। 12, कृषकों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दिलीप स्वामी कलकत्ता के गुलारी ने अपने अध्ययन के दौरान 1970-80 के बीच किसानों के शोषण का मूल्य 400,000 करोड़ आका, जबकि अध्ययन में केवल मुख्य कृषि पैदावार को लिया गया। दामों की इस लूट के कारण किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी और आंदोलन को ही इस समस्या का समाधान माना गया। 13, राजनीतिक कारक। हमारे देश में कृषकों का बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरा होना राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सदैव एक समस्या रही है। संभवतः यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक दल सामान्य कृषक वर्ग की स्थिति समझने के लिए तथा उनसे निकट संपर्क में आने के लिए अधिक रुचि नहीं ले पाते। यह कुछ विशेष राजनीतिक दलों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 चुनावों को छोड़कर कांग्रेस सदैव शासन में रही और उसने कभी इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। इस स्थिति में केवल साम्यवादी दल ने ही कृषक समस्याओं को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा केरल में चलाए सभी कृषक आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी दल के सहयोग से ही चले। बंगाल में कृषक आंदोलन के कर्ता रंगदास ने अपनी अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भारत में कृषक आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग साम्यवादी दल का रहा। नक्सलवादी आंदोलन ने सबसे बड़ा कार्य किया कि देश का ध्यान भूमि समस्या की ओर खींचा तथा उसके आधार पर हो रहे शोषण को उजागर किया। इस प्रकार साम्यवादी दल ने किसानों के साथ हो रहे अन्याय को सामने लाकर कृषक आंदोलन की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। भारत में किसान आंदोलन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। किसान आंदोलन को अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में सन 1986 में लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर संगठित रूप दिया गया, जिसके सभापति स्वामी सहजानंद थे। 1987 में किसान सभा की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, परंतु किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। सामंतवाद विरोधी किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो बुनियादी तौर पर आधारित है, विभिन्न स्तरों से गुजरते विकसित होते यह जुझारू रूप अख्तियार कर लेता है और तब तक जारी रहता है जब तक पूरी तरह से सामंती अवशेषों की समाप्ति, पिछड़े उत्पादन संबंधों की समाप्ति तथा भूमिहीन गरीब व निम्न मध्यम श्रेणी किसानों के हितों में क्रांतिकारी भूमि सुधार नहीं हो जाता। वास्तव में यह लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, काफी उतार चढ़ाव वाला संघर्ष है। इसलिए इसके बुनियादी कार्यक्रम जोतदारों की तमाम जमीनों तथा सार्वजनिक जमीनों, आहार पोखर बगीचा आदि की शक्ति और उसका भूमिहीन गरीब और निम्न किसानों के बीच जमीन जोतने वालों की उसूल पर वितरण, धनी किसानों की पट्टे पर लगाई जमीन की जब्ती आदि का आनन फानन में रातों रात का कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और न ही एक आध बड़े संघर्ष की चोट से सामंती अवशेषों का खत्म किया जा सकता है। उल्टे कठिन प्रयास के द्वारा गरीब किसानों पर भरोसा करते हुए मध्यम किसानों को गोलबंद करके धनी किसानों को नियंत्रित करते हुए सामंती अवशेषों का यानी उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधारों का समूलतः नाश किया जा सकता है। वर्तमान समय के किसान आंदोलनों का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरू होता है, जिसने जमींदारी प्रथा के तहत काश्तकारी एवं रैयतवाड़ी किस्म की व्यवस्थाएं जबरन लागू की और इस तरह अधिकांश क्षेत्रों में जमीन की निजी हकदारों की धारणा फैलाई, जबकि वजूद में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्हें इन व्यवस्थाओं से लाभ पहुंचा वे सारे के सारे ऊंची जातियों के थे और इस कारण दूसरों में जो मजदूर के रूप में बदल गए थे बेहद असंतोष फैला। भारतीय बाजार पर विदेशी उद्योगों में बनी सस्ती वस्तुएं, खासकर कपड़े के धावा बोलने के कारण गांवों के दस्तकारों की कमर टूट गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्रोत नष्ट हो गए। इस स्थिति में नकद भूमिकर व जबरन वसूलने के कारण किसानों को काफी दिक्कतें आने लगी, कर्ज बढ़ने लगा, रेहन की जमीन सुदखोरों के हाथ लगने लगी। इन सब कारणों से किसानों में व्याप्त असंतोष दंगों एवं आंदोलनों का रूप लेने लगा। बंगाल में असंतुष्ट किसानों के विद्रोह की रिपोर्ट 1783 में मिलनी शुरू हुई। इसके साथ लगे बिहार एवं उड़ीसा राज्यों में कुल और भूमिज विद्रोह के 1831 से 1833 के दौरान हुए थे, जिसमें हजारों आदिवासी मारे गए थे। 1857 के विद्रोह में असंतुष्ट किसानों ने हिस्सा लिया था। 1857 के विद्रोह कुछ इतिहासकार भारतीय आज़ादी की प्रथम लड़ाई कहते हैं। इस विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश राज्य ने औपनिवेशिक प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही किसान आंदोलन के इतिहास के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। किसान आंदोलन नए सिरे से उभरे और उसके आक्रोश के केंद्र ग्रामीण समुदाय में निकटवर्ती उत्पीड़न बने। इस प्रकार 1859 से 1862 के दौरान भारत के बंगाल के नील उत्पादन के किसान अपने जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए और 1872-73 में पावना तथा बोगरा में एक बार फिर आक्रोश का उभार आया। दक्कन के किसानों ने 1875 में विद्रोह किया और कर्ज संबंधी कागजात जब्त करने की कोशिश की। इस विद्रोह ने जल्दी ही कुनबियों और मारवाड़ियों के बीच जाति संघर्ष का रूप ले लिया। भूमिहीन मोपला मजदूर नंबूदीरी ब्राह्मण जातियों से केरल से टकराए। इनके अलावा अनेकों ऐसे घटनाएं हुई जिनमें भूमिहीन और गरीब बना दिए गए। किसान सूदखोरों, व्यापारियों और जमींदारों से पुरानी अदावत चुकाने के लिए गिरोह में संगठित हुए, लेकिन बाद में अवैध तत्व बनकर रह गए। अंग्रेजी शासन की शुरुआत में ऐसे गिरोहों और उसके नेताओं की कहानियां तथा पराक्रम लोक कथाओं के विषय बन गए थे। यह परंपरा अब तक जारी है। अभी 1981 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 सम्राटों में से एक छविराम ने अपने बारे में कहा था, जब तक किसान भूखों मरेंगे कोई न कोई छविराम मौजूद रहेगा। इससे अवैध तत्व किसान के आदिकालीन और अधकचरे आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के शुरू के अकालों का एक सिलसिला बना रहा। इसका कारण यह था कि अंग्रेजी राज्यों में किसानों का शोषण इतना बढ़ गया था कि किसी सूखा काल को सहन करने की शक्ति इसमें नहीं रही। यद्यपि युद्ध काल में दमन चक्र भी बढ़ गया था, अमन सभाओं की स्थापना हुई, स्कूलों में सरकार की विजय के गीत गाए जाते थे, पर जनता में असंतोष व्याप्त हो रहा था, जिसका विस्फोट 6 अगस्त 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई हड़ताल से हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में एक चमत्कार की तरह यह हवा फैल गई, जो एक नई चेतना का उदय था। इसका प्रमाण 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में मिला। यद्यपि असहयोग आंदोलन की लहर 1922 की नया कांग्रेस के बाद ठंडी हो गई और राष्ट्रीय जीवन में उसकी प्रतिक्रिया भी हुई, पर किसानों में जो चेतना आई वह अस्थायी हो गई। स्वराज पार्टी ने विधानसभा में प्रवेश कर किसानों के लाभ के लिए कुछ प्रश्न उठाए। इससे किसानों में अधिकारों की चेतना जाग उठी। उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी कुछ सुधार भी हुए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन सुधारों में कुछ मताधिकार भी बढ़ा। इससे जनता की दृष्टि में सरकार पक्ष और जनता पक्ष दो विभाग हो गए। चुनावों में जमींदारों के पक्ष को सरकारी पक्ष कहा जाता था, जमींदार प्रत्याशी के विरोध में खड़े होने वाले उम्मीदवार को जनता पक्ष कहा जाता था। इस तरह शक्ति संतुलन की विचारधारा पैदा हो गई। इस पर ग्रामीण जनता में दो पक्ष बन गए थे। मताधिकार बड़े किसानों को मिला, इसलिए किसानों में शक्ति का संचार थोड़ा ही हो पाया था। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के साथ ही साथ किसानों में वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव हुआ था। सन 1931-32 के सत्याग्रह आंदोलन में किसानों में वर्ग चेतना जग चुकी थी। सत्याग्रह आंदोलन और जेल भरो आंदोलन के साथ किसानों द्वारा सरकार को लगान न देने का आंदोलन शुरू हो गया। यह कुछ चुने हुए गांव में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी लहर व्यापक हो गई। अब तक विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव में दो पक्षों में किसान जनता के बहुमत का समर्थन कांग्रेस को मिलता था। किसान जमींदार संघर्ष भी यही रूप लेता था। लगानबंदी आंदोलन में किसानों का सीधा संघर्ष सरकार से हो गया, जिसमें सरकार के साथ जमींदार भी शामिल थे, किंतु जन आंदोलन के कारण उनमें अधिकांश छोटे जमींदार अलग अलग हो गए। बड़े जमींदार सरकार के पक्षधर थे, पुलिस के डर से वे भी अलग थलग से ही रहते थे। लगानबंदी आंदोलन के साथ सरकारी वस्तुओं का भी बहिष्कार होने लगा। किसानों की इस जागृति के फलस्वरूप 1931 की कराची कांग्रेस में जनता के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद 1932 में पुनः आंदोलन छिड़ा तो वह उत्तर प्रदेश के किसानों के सवाल को लेकर ही शुरू हुआ। उस समय अवधि की तालुकेदारी के किसानों पर लगान बकाया हो गया था, जिसको देने की समर्थ उनमें नहीं थी, अतः जबरन वसूली तथा दमन होने लगा। महिलाओं और बालकों को गिरफ्तार किया गया, घर लूटे गए, किंतु किसानों का साहस नहीं टूटा। उन्होंने सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना किया। लगानबंदी आंदोलन में आगरा की भूमिका अग्रणी रही, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर हुआ। लगानबंदी आंदोलन के सिलसिले में लड़कों को भी बेत की सजा हुई। गड़ी सहजा में जमींदारों के इशारों पर किसानों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे किसान मारे गए। किसान गाड़ी से बात कर घसीटा गया, उन पर सभी प्रकार के अमानुष अत्याचार हुए। इससे पूरे जिले में जमींदारों के विरुद्ध किसानों में ऐसा असंतोष जागृत हुआ जो जमींदारी प्रथा खत्म होने तक जारी रहा। इसमें किसानों की ही शक्ति का प्रदर्शन और उसके बलिदान के परिचय मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन काल में सिरावली और जयगारा का झंडा आंदोलन, 1942 के आंदोलन में चमरौला स्टेशन का अग्निकांड जिसमें 4 किसान बच्चे पुलिस की गोली से शहीद हो गए, के द्वारा विभिन्न भागों में किसान आंदोलन की लहर फूट निकली थी। बरारा गांव में जमींदार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा, जिसमें अलीगढ़ और दूर दराज के किसान कार्यकर्ताओं ने संघर्ष में भाग लिया। बड़ोदरा गांव में किसान सत्ता के समय में झाड़ी आंदोलन, जिसमें किसानों की चरगाह के भूमि पर जमींदारों ने कब्जा किया और सरकार ने जमींदारों की हिमायत की, इसमें किसानों की ही विजय हुई। 1935 के इंडिया एक्ट के अनुसार चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई और 9 राज्यों में कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुई। इस काल में जो सबसे बड़ा काम हुआ वह किसानों का बकाया लगान माफ कर देना था, जिसका सूत्रपात उत्तर प्रदेश में हुआ। चौथे दशक के विश्वव्यापी मंदी ने भारत के किसानों को कमर तोड़ दी थी। वे लगान नहीं चुका सकने की स्थिति में थे। बकाया लगान माफ कर देने से किसानों को राहत मिली, किंतु बोहरों के कर्ज से वह लदा रहा। जमींदारों का शोषण चलता रहा। कांग्रेस में किसान संगठन के पक्षधर नेता जैसे अंत में एनजी रंगा तथा उत्तर प्रदेश पुरुषोत्तम दास टंडन श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आदि थे। असहयोग आंदोलन से लेकर अब तक कांग्रेस सम्मेलन के साथ साथ किसान सम्मेलन भी होता था, जबकि प्रगतिशील नेतृत्व द्वारा किसान सभा के तत्वाधान में स्वतंत्र किसान आंदोलन प्रचलित हो गया। इस समय तक कम्युनिस्ट नेता एमएन राय ने भी कांग्रेस में शामिल होकर किसानों के वर्ग संगठन और किसान सभा का विरोध किया तथा कांग्रेस में शामिल होकर किसानों की प्रतिनिधि सभा कहकर प्रचार किया। 1936 की लखनऊ कांग्रेस में अध्यक्ष पद से जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन का ध्येय समाजवादी घोषित किया और इसी अवसर पर स्वामी सहजानंद के सभापतित्व में स्वतंत्र किसान सभा का अधिवेशन कांग्रेस के पंडाल में हुआ। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के वर्ग संगठन का एक आंदोलन बन गई, जिसमें अपनी स्वतंत्र नीति और लक्ष्य था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही आर्थिक क्षेत्र में चौथे दशक की मंदी का रूप बदल गया, महंगाई बढ़ने लगी। 1943 में बंगाल में घोर सूखा पड़ गया, जिसमें लाखों प्राणी भूखे मर गए। अनाज सेठ साहूकारों के पास जमा हो रहा, जिसे महंगाई का लाभ उठाया और बंगाल की जनता भूख से तड़पती मरती रही। अधिक अनुपजाऊ आंदोलन शुरू हुआ, जिससे किसानों की भूमिका पड़ती तोड़ आंदोलन और किसानों को साधन उपलब्ध कराने के साथ उनकी मांगें बढ़ी, जिसके साथ जमींदारों और सरकार के स्वार्थ भी जुड़ गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तोड़फोड़ की घटनाओं का वेग भारतीय क्षेत्रों में जोरों पर रहा। हिटलर के रूप में इस आक्रमण करने के साथ युद्ध के स्वरूप में एक परिवर्तन आया, जिसके कारण किसान आंदोलन के रूप में ही परिवर्तन हुआ। तोड़फोड़ आंदोलन का रूप रचनात्मक कार्यों से राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का बन गया। जापान के खतरे को देखकर किसान सभा की नीति में भी परिवर्तन हुआ। संकट काल में ब्रिटिश सत्ता से शक्ति छीनने के उद्देश्य को लेकर किसान मोर्चे को अधिक शक्तिशाली बनाना किसान सभा की नीति हो गई। इसी काल में विजयवाड़ा और नेता कोना में किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ। हाथरस में स्वामी सहजानंद के सभापतित्व में उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन हुआ। महायुद्ध काल में यद्यपि किसान संगठन की सभी शक्तियों में एकता नहीं रह सकी, पर किसान आंदोलन चलता रहा। देश में राष्ट्रीय चेतना के साथ किसानों में वर्ग चेतना बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात भी किसान आंदोलन से ही हुआ, जिसके लिए बंगाल बिहार में किसानों का नील की खेती का आंदोलन, पंजाब में कूका आंदोलन तथा बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की चिंगारियां फूटी। ऐसी रियासतों में किसानों के दोहरे शोषण से उत्पन्न किसान आंदोलन और विद्रोह की अपनी एक भूमिका है। राजस्थान में बिजौली और शेखावती के किसान आंदोलन ने रियासती हुकूमत के विरुद्ध एक लहर पैदा कर दी थी, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसी रियासतों का भारत राष्ट्र में विलीनीकरण आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण जहाँ ऐतिहासिक प्रगति है, वहीं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता थी, जिसको न केवल रोका जा सकता था और न उसमें विलंब भी किया जा सकता था। यदि ऐसा होता तो किसान विद्रोह कर देते। भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई विकल्प सोचे गए, जिनमें एक सहकारी ढंग की खेती भी है, जिसे तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कानूनी रूप भी दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। इसके स्थान पर साझे की खेती, जिसे साधन सहकारी समिति कहा जाता है, का प्रयोग सफल भी रहा है। जमींदारी उन्मूलन के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की हुई। योजना में कृषि उन्नति और कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया, किंतु उसके बाद गिरावट शुरू हुई, क्योंकि कई अन्य राज्यों में जमींदारी उन्मूलन कानून तो बनाया गया लेकिन अमल में नहीं आया। इसका कारण यह है कि सत्ताधारी दल में जमींदार वर्ग और मध्यम वर्ग के स्वार्थ समान हो गए। किसानों को उनकी जोत की सीमाओं से बेदखल कर देने का क्रम चालू हुआ। इसके बाद अभूतपूर्व जमींदारों को जो खुद काश्त के लिए जमीन दी गई थी, उसे बढ़ाकर उन्होंने अपने कृषि फार्म बना लिए। हिमालय की तराई में पड़ती तोड़ जमीन पर निहित स्वार्थों के बड़े बड़े कृषि फार्म बन गए। उन्नत खेती के नाम पर राजनीतिक नेताओं तथा व्यावसायिक वर्ग ने अपने नए फार्म बनाए, जिसके लिए किसानों ने भूमि छीन ली किसानों से भूमि छीन ली गई, जिसे कानूनी रूप भी दे दिया गया। 1965-66 के सूखा अकाल के बाद हरित क्रांति का आगमन हुआ, जिसमें खदान का उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसका लाभ बड़े जोत वाले किसानों और फर्मों के मालिकों को ही मिला। छोटे किसानों की हालत बदतर होती गई। उनकी जोते की जमीन घटती गई, हर चीज की कीमत बढ़ती गई, खेतिहर मजदूरों की तादाद बढ़ी, साथ ही बेकारी भी बढ़ी। अतः खाद्यान्न उत्पादन में जहाँ 2.5-3 गुने की वृद्धि हुई, वहीं छोटे किसान और ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में इतनी ही कमी हुई जिससे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। फलतः बड़ी संख्या भूखमरी, आवास तथा वस्त्र कमी से छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी किसान जनता पिछड़ी हुई ही रही है। गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीणों की संख्या 1957-58 में 18.2 करोड़ थी, जो 1973-74 में बढ़कर 22.1 करोड़ तक पहुंच गई। खेतिहर मजदूरों की औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय जो नियतांक मूल्यों के आधार पर 1960-61 में 552 रुपये थी, यहाँ घटकर 1975-76 में 285 रुपये पर जा पहुंची। ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 49,000 की आबादी पर एक औषधालय तथा 3,00,000 की आबादी पर एक औषधालय और 8,387 की आबादी के लिए एक अस्पताल बने हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी पर एक औषधालय और 30,000 पर एक अस्पताल बने हैं। कुल 5,79,936 गांवों में से 3,14,470 गांव शहरों से नहीं जुड़े हैं और 4,07,279 गांवों से सिर्फ अच्छे मौसम से ही सड़कों के जरिए पहुंचा जा सकता है। अशिक्षितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक आज़ादी ग्रामों के लिए एक गंभीर छलावा के रूप में आई और किसान आंदोलन को पुनः एक बार फिर उभारा। इस आंदोलन पर गांधीवादी तरीके से जो रोशनी तेज की गई वह लुप्त हो गई। चूंकि साम्राज्यवादी सरकार जा चुकी थी, इसलिए अब ग्रामीण समुदाय के लिए उसका सामूहिक शोषण करने वाले किसी बाहरी दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन ने गांधीवादी स्वरूप को छोड़कर हिंसक रूप ले लिया। जमींदारों और सुदखोरों के खिलाफ तेलंगाना और नक्सलवाड़ी के इलाकों में रूप जाहिर हुआ। परंपरागत मार्क्सवादी किसान आंदोलन एक अंधी गली में खो गया और इसके संस्थाओं को, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ ग्रामीण इलाकों में सिमट करा गए और खेतिहर मजदूरों के लिए ज़्यादा मजदूरी के लिए कल्पनाओं के शिकार होकर जूस खरोस में वह अपनी किस्म के जमीन हड़प आंदोलन चला रहे थे। व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति दानशीलता बरत कर किसान आंदोलन में घुसपैठ की। बैंकों द्वारा खास अवसर पर समारोह व सभाओं के माध्यम से कर्ज जिनके लौटाए जाने की बात गंभीरता से नहीं की जा सकी नहीं ली जाती दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, कार्य के बदले अनाज योजना, स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की योजना इस दानशीलता के उदाहरण है। जिसके लाभ के लिए यह योजना बनाई गई, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। दलाल और नौकरशाह इसके जरिए अच्छी खासी रकम जरूर बनाते हैं। किसान आंदोलन को इन योजनाओं के द्वारा चारों खाने चित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को फर्जी मुठभेड़ के जरिए कुचल दिया गया। किसानों को गुलबंद करने के लिए किसी भी प्रकार की कोशिश पर आंख तरेरी गई। ऐसी स्थिति में नया आंदोलन अचानक सतह पर आया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे ग्रामीणों के हर हिस्से से भारी समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे नेताओं के आह्वान पर, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना तक नहीं था, लोग हजार स्वयं लाखों की संख्या में जुटने लगे। यह चाहे प्रचार के लिए मामूली रैली हो या गिरफ्तारी देने के लिए नागरिक असहयोग कार्यक्रम। इस आंदोलन के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके वाक व्यवहार की क्षमताओं और मुहावरों में नयापन था। किसानों का आंदोलन, जो राष्ट्रीय गतिविधियों की रूपरेखा में गौण था, अचानक बिल्कुल केंद्र में आ गया। किसानों के आंदोलन ने देश में अचानक वयस्कता प्राप्त कर ली। वर्तमान किसान आंदोलन कृषक पैटर्नों का गुणगान नहीं करता, न ही औद्योगिकरण के पहले के ग्रामीण जीवन के आदर्श रूमानी नजरिए से इसका कोई लगाव है। मेरी माटी कितनी हरी वृद्धि जैसे रवैये का नहीं तलस्ताय रस्किन गांधी के तरीकों के ग्रामीण जीवन पद्धति और न अध्यात्मवाद के बीच मानसिक जुड़ाव का यह प्रतिनिधित्व करता है। यह किसानों के जीवन में आमतौर पर जोड़े जाने वाले उत्कर्षों जैसे सहजता और सादा जीवन के प्रति भी खास उदारपूर्ण नजरिया नहीं रखता। दूसरी विशेषता यह है कि पिछले किसान आंदोलनों ने कृषक समुदाय की आर्थिक राष्ट्रीयता जाति धर्म और राजनीतिक धाराओं के आधार पर बांटने की कोशिश की है, किंतु नए आंदोलन ने सारी ग्रामीण आज़ादी को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी जाति धार्मिक और राजनीतिक नजरिए से सभी लोगों को शोषण करने वाले बाहरी दुश्मनों के खिलाफ एकजुट कर लिया है। नए किसान आंदोलन की तीसरी विशेषता यह है कि उसने लगभग पूरे तौर पर अपने से को कृषि उत्पादों के मूल्यों के मुद्दे पर केंद्रित किया है। कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों के मुद्दे को न सिर्फ किसानों की बेहतरी बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास के लिए एक सूत्री कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया है। पिछले जमाने में किसान आंदोलन ने हमेशा अनेक मांगों को जटिलता से पेश किया है। उदाहरणार्थ सिंचाई की सुविधाओं, कर्ज से राहत, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के लिए आर्थिक सहायता आदि। इस मामले में कुछ संगठनों ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा सरकारी नौकरी में किसानों के आरक्षण की मांग की। वर्तमान किसान आंदोलन मार्क्सवादी दर्शन के सिद्धांतों से काफी अलग हट कर यह मानता है कि पूंजी संचयन दरअसल महानगरीय औद्योगिक मजदूरों के शोषण से उतना नहीं हुआ है जितना तीसरी दुनिया के उपनिवेशों से शोषण से। वर्तमान कृषक आंदोलन की यह भी विशेषता है कि यह अपने आप को महज कृषक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं मानता, हालांकि इसकी एक सूत्री मांग कृषक मूल्यों से जुड़ी है, और सत्य यह है कि इसके समर्थक मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में से हैं। भारत के कुछ प्रमुख कृषक आंदोलन, सम मेन पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय समाज के कृषक आंदोलन के इतिहास में नक्सलवाड़ी, तेलंगाना, तेभांगा, भूदान सर्वेदय तथा भूमि हथियाओं आंदोलनों का नाम प्रमुख रूप से उत्तर महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन घटित हुए हैं। 1955 के पश्चात इन कृषक आंदोलनों में कुछ ज़्यादा तेजी आई। इन आंदोलनों के निम्नलिखित 6 आधार रहे जिनसे उत्पन्न स्थितियों से आंदोलनों की आधारशिला रखी। पहला, जे.जी. फास्थोप के अनुसार खेती से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ने पर किसान आंदोलन होते हैं। दूसरा, सुखबीर चौधरी ने फसल नष्ट हो जाने अथवा प्राकृतिक और प्रकोपों से उत्पन्न स्थितियों को कृषक आंदोलन का सहायक माना है। तीसरा, जोगेश चंद्र बघाल की मान्यता अनुसार जब भूस्वामियों द्वारा किसी विशेष फसल की खेती कृषक इच्छा न होने के बावजूद या उचित लाभांश प्राप्त न होने के कारण जबरदस्ती करवाई जाती है तब भी प्राय कृषक आंदोलन होते हैं। चौथा, नटराजन ने आंदोलनों द्वारा किए जाने वाले शोषण को कृषक आंदोलन का मुख्य कारण बताया है। नटराजन ने महाजनों द्वारा किए जाने वाले शोषण को कृषक आंदोलन का मुख्य कारण बताया है। पांचवा, रंगा तथा पी सुंदरैया ने यह मान्यता व्यक्त की कृषि व्यवसाय से संबंधित अधिकारियों की नीतियों अथवा शोषण की प्रवृत्तियों से भी कृषक आंदोलन का जन्म होता है। छवां, प्रियरंजन भारती के अनुसार खेतिहर मजदूरों को बंधक बनाकर उन्हें पुष्ट बंधुआ मजदूरी करने पर विवश करना भी कृषक आंदोलन का कारण बन जाता है। उपरोक्त धारा पर भारत में हुए विभिन्न कृषक आंदोलनों की विवेचना करने पर हमारे सामने कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। पहले प्रकार के सामाजिक आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1920-22 के मध्य किसान सभा तथा एका आंदोलन के नाम से गठित हुए, जिनका मूल कारण यह था कि बीजों के दाम तथा भूमि लगान की दर में अचानक वृद्धि की गई थी। दूसरे प्रकार का आंदोलन गुजरात के खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1919 में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य आधार यह था कि फसल की बर्बादी के कारण किसानों ने करों लगान की दर घटाने की मांग की थी, किंतु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। तीसरे प्रकार के आंदोलन बंगाल तथा चंपारण में यूरोपीय भूस्वामियों, स्थानीय जमींदारों, ब्रिटिश सरकार तथा महाजनों के विरुद्ध तय किए गए, जब किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया। बंगाल में यह आंदोलन 1860 में हुआ, जबकि बिहार में यह 1917 में प्रारंभ हुआ। चौथे प्रकार के आंदोलन मराठवाड़ा महाराष्ट्र में हुए। अहमदनगर में मराठा किसानों ने भूस्वामियों के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। भूस्वामियों द्वारा किए गए शोषण में फसल का उचित भाग न मिलना तथा किसान वर्ग की स्त्रियों का दैहिक शोषण प्रमुख था। पूना का कृषक आंदोलन उन महाजनों के विरुद्ध हुआ जिन्होंने किसान की जमीन तथा हड़पी तथा चवरण नीलाम कर दी। पांचवें प्रकार के आंदोलन अतिरिक्त कर की वसूली तथा बेगार के विरुद्ध में किए गए, जिसमें 1855-56 का संथाल आंदोलन, 1836-96 का मालवार के मुपलाहों का आंदोलन तथा 1930-51 का तेलंगाना आंदोलन अत्यंत प्रसिद्ध है। छठे प्रकार के आंदोलन मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए, क्योंकि नागरिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक स्तर पर बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आंदोलन में पलामू मुक्ति संघर्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा आदि कार्यरत हैं। श्रमिक आंदोलन की ही भांति कृषक आंदोलन भी मुख्य वर्ग संघर्ष से संबंधित है। कृषकों के विरोधी पक्ष ही इसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अनेक आंदोलन में इन विरोधी पक्षों का सीधा तथा स्पष्ट विरोध किया गया। अनेक बार अहिंसक माध्यमों से तथा अनेक बार गुरिल्ला युद्ध के स्तर पर भी कई आंदोलन अहिंसक एवं समझौतापूर्वक स्थितियों में भी हुए। इस स्थिति में देखा जाए तो भारतीय कृषक आंदोलन मुख्यतः दो विचारधाराओं में विभाजित किया दिखाई पड़ता है। एम एस राव ने इस मानता को उदाहरण देते हुए समझाया है कि भूदान सर्वोदय तथा अन्य अहिंसक आंदोलन मूलतः गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित रहे। इसके विपरीत तेलंगाना नक्सलवादी तथा अन्य भूमि हत्याओं आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे और तत्कालीन क्षेत्रीय कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों ने भरपूर सहायता दी। तेलंगाना किसान आंदोलन 1930-51 के मध्य हैदराबाद के निजाम तथा उसके राजाकारों के विरुद्ध जो कृषक आंदोलन हुए उन्हें तेलंगाना कृषक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1720 के लगभग जबकि निजाम ने हैदराबाद की गद्दी संभाली तब हैदराबाद भाषाई आधारों पर तीन भागों में विभक्त था। 8 जिलों का तेलंगाना, 5 जिलों का मराठवाड़ा तथा 3 जिलों से बना कर्नाटक। तेलंगाना का ही क्षेत्र सबसे विस्तृत था, अतः हैदराबाद के आंदोलन में तेलंगाना का सर्वाधिक सहभागिता होने के कारण यह तेलंगाना आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस क्षेत्र का 85% मूल व्यवसाय कृषि था और 40% से अधिक भूस्वामित्व निजाम, उसके अन्य राजाकार, जागीरदार तथा मकतेदारों के हाथों में था। प्रायः प्रत्येक गाँव आधिकारिक स्तर पर किसी न किसी देशमुख अथवा देश पांडे के अधीन होता था। जमीन के स्वामित्व की धारणा के कारण खेतवर मजदूरों का शोषण कृषक समाज में एक सामान्य सी बात हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब महंगाई में वृद्धि हुई तो जागीरदारों, भूपतियों तथा सरकारी अफसरों ने ग्रामीण कृषकों का भरपूर शोषण किया। बेगार एवं जोर जबरदस्ती से श्रम कार्यों की धारणा पूरे हैदराबाद तथा विशेषकर तेलंगाना में अधिक तेजी से फैली। जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत सेवक जातियों की खेती के लिए कम दामों पर किराए की जमीन दी जाती थी, किंतु इस एवज में उनसे यह उपेक्षा की जाती थी कि जब कोई राजादार संबंधित गांव का दौरा करेगा तो उसके रहने तथा खाने पीने का प्रबंध वहीं खेतिहर करेगा। गांव के चमार, धोबी, कुम्हार, नाई, बढ़ई तथा लुहार जाति के लोग इसी कारण देशमुखों तथा देश पांडों के सेवा कार्य में बेगार करने पर मजबूर हुए। हरिजनों तथा ब्राह्मण पुरोहितों को भी बेगारी से बचने के उपाय ढूंढने कठिन हो गए। इन समस्त कारणों ने ग्रामीण कृषक समाज को जागीरदारी तथा विशेषकर अंग्रेजी सरकार के समर्पित निजाम के विरुद्ध संघर्ष करने पर बाध्य किया। 1921 के एक सामाजिक सम्मेलन के दौरान जब एक वक्ता ने अपने विचार तेलुगु में व्यक्त करने का प्रयास किया तो सदस्यों ने आपत्ति करते हुए उर्दू अथवा मराठी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इस छोटी सी घटना ने भाषाई आधार पर संगठित 8 जिलों के तेलंगाना में अपनी मूल भाषा तेलुगु के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाया और 22 नवंबर 1923 को आंध्र जनसंघम की स्थापना हुई। यह संस्था साहित्यिक तथा भाषा संबंधी क्रियाकलापों के साथ साथ सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में रुचि लेने लगी। जब इस संस्था ने बाध्य मजदूरी या श्रम कार्यों के खिलाफ आवाज उठाई तो तेलंगाना के कृषक आंदोलन में अधिक शक्ति का सूत्रपात हुआ। नालगोडा तथा वारंगल क्षेत्रों में समाज सुधार कार्यों में तीव्रता आई एवं दो तेलुगु साप्ताहिकों के माध्यम से इस आंदोलन का अधिक प्रचार मिला। तेलुगु की तुलना में मराठी का विरोध तो कम हुआ किंतु उर्दू का विरोध अधिक हुआ। प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों ने मजलिस इतिहाद उल मुसलमीन की स्थापना की तथा उर्दू भाषा को बचाने के साथ साथ मुसलमानों को संगठित किया। प्रतिफल यह हुआ कि भाषाई आधार पर निर्मित आंध्र जनसंघम ने जहां कृषि आंदोलन को सहयोग दिया वहीं मजलिस इतिहाद उल मुसलमीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप निजाम का समर्थन करना शुरू कर दिया। आर्य समाज से संबंधित प्रबुद्ध वर्ग राज्य में मुसलमानों के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित था। समाज में धर्मांतरण का भरपूर विरोध किया। इस स्थिति ने हिंदू मुसलमान शासकों संघर्षों को जन्म दिया। ये संघर्ष धीरे धीरे पूरे तेलंगाना फैल गए और तेलंगाना आंदोलन की दो धाराएं हो गई। एक धारा कृषक मजदूर तथा निजाम एवं राजाकारों के संघर्ष से संबंधित थी तथा दूसरी धारा कृषक समर्थित हिंदू तथा निजाम मुसलमानों के संघर्ष से संबंधित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जब अनाज की कमी हुई तो अनेक खाद्य सामग्रियों पर राशन व्यवस्था लागू हुई। प्रत्येक किसान को अपनी खेती पर प्रति एकड़ कुछ अनाज देना अनिवार्य कर दिया गया। इस अनाज की सरकारी कीमत बाजार कीमत से बहुत कम थी, अतः कृषकों ने प्रतिरोध किया। इस अनाज की सरकारी कीमत बाजार कीमत से बहुत कम थी, अतः कृषकों ने प्रतिरोध किया। सरकार ने युद्ध कोष के नाम पर भी कृषकों का आर्थिक शोषण किया। युद्ध कोष में धन दान के नाम पर कृषकों को बाध्य किया गया। दूसरी ओर देशमुखों तथा देश पांडो ने बटाईदारों, कृषक, श्रमिकों तथा अन्य सेवक जातियों का शोषण जारी रखा। इन समस्त स्थितियों से जूझते हुए जब कृषक समाज की सहनशीलता समाप्त होने लगी तो उसका आक्रोश उबाल के रूप में प्रचंड आंदोलन बनकर प्रकटित हुआ। इस आंदोलन को दबाने का प्रयास भूपतियों तथा स्थानीय पुलिस ने सम्मिलित रूप से एकजुट होकर किया। नालगोंडा जिले में पुलिस के आक्रमण तथा अत्याचार की घटनाएं दैनिक जीवन चक्र में शामिल हो गई। इनसे निपटने के लिए आंध्र महासभा तथा कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक आंदोलनकारियों ने लाठी तथा गुलेल का प्रारंभिक सहारा लिया। दूर से मार करने के लिए गुलेल तथा निकट से मारपीट करने के लिए लाठियों का प्रयोग करना सिखाया गया। महिला स्वयं सेविकाओं ने पुलिस से निपटने के कई अनोखे तरीके निकाले। दूर से पत्थर मारना, मारपीट, उतारी पुलिस वालों पर गर्म पानी उड़ेल देना तथा दैनिक अत्याचार पर आमादा पुलिस वालों की आंख में लाल मिर्च जो पहले से छिपा कर रख ली जाती थी डाल देना सामान्य तरीके थे। नवंबर 1946 में निजाम प्रशासन ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया तो यह आंदोलन धीमा पड़ गया, किंतु 1947 में भारत के आजाद होते ही यह उम्मीद जागी थी कि निजाम के दमन चक्र में कमी आएगी, अतः कृषक समाज ने संतोष की सांस ली। 27 अगस्त 1947 को जब निजाम ने पृथक राज्य की मांग करते हुए भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया तो तेलंगाना का दबा हुआ आंदोलन दूसरे आकार प्रकार में पुनर्जीवित हो उठा। सत्याग्रह हुए, वंदे मातरम गीतों का उद्घोष हुआ, किसानों के साथ साथ सामान्य लोगों ने भी अपने मकानों और खेतों की मेड़ों पर तिरंगा लहरा कर राष्ट्रीयता का समर्थन तथा निजाम के विरोध का प्रदर्शन किया। निजाम तथा उसके राजकारों के विरोध में छात्र भी शामिल हो गए तथा कम्युनिस्ट समर्थकों ने एक बड़ी गुरिल्ला सेना की को भी तैयार कर ली। 1948 आते थे निजाम तथा उसके समर्थकों ने आंदोलनकारियों को अनेक प्रकार से आतंकित किया। शासन विरोधी लोगों को मार डाला गया, अनेक स्थानों पर हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं भी हुई। शासन ने अनेक कम्युनिस्ट और कांग्रेस नेताओं को जेल में भर दिया तथा सरकार पटेल के सहयोग से जब 1947 में निजाम का आत्मसमर्पण संभव हुआ तब जाकर यह आंदोलन पुनः कुछ धीमा पड़ा। निजाम के समर्पण के बाद सैनिक शासन को स्थानीय कृषकों का भरपूर सहयोग मिला। कम्युनिस्ट समर्थकों ने आंदोलनकारियों की पकड़ ढीली नहीं करनी चाहिए, अतः गुरिल्ला युद्ध के स्तर पर पुनः इस आंदोलन की नींव पड़ी और गांव से बढ़ते हुए सुदूर वन्य जाति इलाकों में फैल गया। सैनिक शासन ने क्रूरता के साथ इस आंदोलन से संबंधित नेताओं की धरपकड़ की, कुछ ने त्यागपत्र दिया तथा अनेक समर्थकों ने यातना क्या घुटने टेक दिए। सर्वोदय विचारधारा के प्रचार के अंतर्गत संत विनोबा भावे ने हैदराबाद में एक सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया। पद यात्रा के दौरान जब वे पोचमपल्ली पहुंचे तो भूमिहीनों ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी कुछ मदद करें। उनके इस सुझाव पर कि भूमिहीनों की सुरक्षा के लिए भूस्वामियों को ही आगे आना चाहिए, रामचंद्र रेड्डी नामक एक भूस्वामी ने तत्काल 100 एकड़ भूमि दान कर दी। इस घटना के बाद 14 अप्रैल 1948 में भूदान आंदोलन की नींव पड़ी और वर्ष पुराना तेलंगाना आंदोलन समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये तेलंगाना आंदोलन का चैप्टर भी लगभग समाप्त होता है। अब हम दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।